दिन भर तारीख 16 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गुजरात में विकास पर जारी बहस के बीच पीएम मोदी का नारा मैं विकास हूँ कांग्रेस पर लगाए कई आरोप।
आपने तय किया था जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आज देख लिया हम कहाँ है आप कहाँ है।
ताजमहल को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम के विवादित बयान पर इतिहासकार क्या कहते हैं?
अंग्रेज हम पर 150 साल हुकूमत कर गया, ये क्या अब भी हमको उतना ही बोझा समझते हैं? जब कोई नहीं बोलेगा हम चाहिए कुछ कर जाएंगे।
और इराकी सेना ने किरकुक एयरपोर्ट और सैन्य ठिकाने पर किया अधिकार, हजारों आम लोगों का पलायन। होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। 4 साल जेल में सजा काटने के बाद तलवार दंपति आज गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें 12 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड में बरी किया था। स्पेशल सीबीआई अदालत ने आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में 25 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इराक सरकार के समर्थन वाली सेनाएं किरकुक शहर को कुर्दिश सेनाओं के कब्जे से वापस लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिसके मद्देनज़र वहां से हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। एक बीबीसी संवाददाता के मुताबिक वहां दुकानें और व्यापार बंद हैं और सड़कों पर सामानों से लदी कारों की कतारें हैं। इराकी सेना का दावा है कि उसने किरकुक हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने और एक तेल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। कई इलाकों में गोलीबारी की भी खबरें हैं। यहाँ इराक और कुर्द सेना के बीच तनाव पिछले महीने हुए विवादित जनमत संग्रह के बाद से शुरू हुआ है, जिसमें कुर्दाबादी ने आज़ादी के पक्ष में वोट किया था। स्पेन की सरकार ने कहा है कि कैटालोनिया क्षेत्र के प्रमुख यह साफ करने में नाकाम रहे हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था या नहीं। स्पेन प्रशासन का कहना है कि कार्लेस पुजीमोंट को गुरुवार सुबह तक ऐसे किसी ऐलान को वापस लेना होगा, वरना वो ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे अंततः कैटालोनिया पर स्पेन का सीधा शासन हो जाएगा। हालांकि स्पेन सरकार की प्रवक्ता ने उन कदमों की जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ऐसे संकेत भी दिए कि स्पेन कैटालन की स्वघोषित सरकार को बर्खास्त करने के बजाय कैटालन प्रशासन को संविधान के दायरे में लाने की कोशिश कर सकता है। स्पेन की उप प्रधानमंत्री सोराया साइंज दी सांता मारिया ने कहा, सबसे पहले हमारी सरकार खेद जताती है कि कैटालोनिया के प्रमुख ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी घोषित की है या नहीं, इस सवाल पर हाँ या ना कहना कोई मुश्किल बात है। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब न दिया जा सके। ये थी स्पेन की उप प्रधानमंत्री सोराया साइंज दी सांता मारिया। पुर्तगाल में अधिकारियों ने बताया है कि जंगलों में लगी आग में 100 से ज़्यादा आगों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हजारों दमकल कर्मी मध्य और उत्तरी पुर्तगाल में 140 से ज़्यादा जगहों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन से सटी सीमा के पास गैलिसिया में एक जली हुई कार से 2 लाशें मिली हैं। लंबे समय से उच्च तापमान और कम बारिश की वजह से यहाँ के जंगलों में आग लग जाती है। गैलिसिया की स्थानीय सरकार के राष्ट्रपति अल्बर्टो नूनेज फेखो ने कहा, पंद्रह इलाकों में स्थिति 2 जैसे हालात हैं। इसका मतलब है कि वहाँ हालात बहुत गंभीर हैं और नागरिकों और उनके घर अब भी खतरे में हैं। ये थे गैलिसिया की स्थानीय सरकार के राष्ट्रपति अल्बर्टो नूनेज फेखो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस में सुरक्षा अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट समूह के 2 शीर्ष चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया है। दोनों सैन्य कार्रवाई में ही मारे गए। इसके सबूत के तौर पर फिलीपींस की सेना ने 2 शवों की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं, जो इस्लामिक स्टेट के स्थानीय प्रमुख इस्निलोन हैपिलोन और चरमपंथी उमर मौते की बताई जा रही हैं। फिलीपींस की सेना दक्षिणी शहर मरावी में महीनों से चरमपंथियों से लड़ाई लड़ रही है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। ये इलाका इस्लामिक स्टेट से जुड़े स्थानीय चरमपंथी संगठन मौते का गढ़ बताया जाता है। सोमालिया के मोगादिशु में शनिवार को हुए बम हमले के बाद पीड़ितों की मदद के लिए तुर्की ने डॉक्टरों की टीम और मेडिकल आपूर्ति भेजी है। सोमालिया की सरकार का कहना है कि हमले में 276 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 लोग घायल हो गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
मैं कहूंगा हूं विकास छू, सारे गुजराती बोलेंगे हूं गुजरात छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू।
गुजरात के लोगों से नारे लगवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात में साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले विकास को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर विकास पागल हो गया है जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे हैं। कांग्रेस ने भी हाल में कई सवाल उठाए हैं। आज गुजरात गौरव सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
परिवार और इस पार्टी के लिए गुजरात आंख में हमेशा चुभता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पार्टी ने, इस परिवार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो इतिहास गवाह है दोस्तों। मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। हमारे मोरारजी भाई देसाई देश के गुजरात से प्रधानमंत्री बने तो इसी टोली ने दुनिया भर में यही फैला दिया कि वो क्या पीते हैं और क्या नहीं पीते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेतृत्व पर गुजरात के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ भी साजिश की।
मैं तो एक मुख्यमंत्री था, अरे आपके पास पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत थी उस समय। कैसे कैसे षड्यंत्र किए थे आपने। मुझे जेल में डालने के लिए आपने तय किया था जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे। और आज देख लिया सच कैसे उभर करके आ गया। हम कहां है, आप कहां है।
नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार तैयार की थी। करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाने का दावा किया गया था। मोदी ने करीब 55 मिनट भाषण दिया, लेकिन क्या वो इस रैली के जरिए अपना संदेश वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब रहे? मैंने गुजराती सेवा के अपने सहयोगी रॉक्सी छारा से यही सवाल किया।
बीजेपी की जब भी चुनाव की बात होती है तो मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री, वो उनके स्टार कैंपेनर हमेशा रहते हैं। आज भी उन्होंने एक नया नारा बीजेपी की ओर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, हूँ विकास छू, यानी मैं विकास हूँ। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये लड़ाई वंशवाद और विकासवाद के बीच में है।
कांग्रेस लगातार आक्रामक है गुजरात में। राहुल गांधी बार बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे बार बार हो रहे हैं। पिछले दौरे में इस दौरे में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है?
इस बार प्रधानमंत्री ने ये एक तरह से कांग्रेस को सीधे सीधे टारगेट कर चुनावी जो लड़ाई है वो उसकी शुरुआत कर दी है। अभी तक राहुल गांधी ने बीजेपी की जो भाजपा सरकार है और उसमें से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स इश्यू, जीएसटी, डीमोनिटाइजेशन, ये बहुत सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। लेकिन आज मोदी साहब ने एक पलटवार किया है और ये जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसको एक नया मोड़ दे दिया है। आज उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा गुजरातियों के खिलाफ रही है। सरदार पटेल की बात कही उन्होंने, मुरारजी देसाई की बात कही उन्होंने, अपनी खुद की बात कही कि जब जब कांग्रेस के सामने विरोध हुआ है तब कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोधियों को जेल में डालने की कोशिश की है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पारंपरिक वोटर हैं, वोटरों का बहुत बड़ा हिस्सा जैसे पटेल समुदाय के लोग, व्यापारी लोग, ये नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिश है वो उन्हें मनाने में वो कामयाब हो पाए?
देखिए, आज यहाँ पर भाजपा का ये क्लेम है कि गुजरात के हर विस्तार से, हर एरिया से और करीब 50,000 से ज्यादा बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर आज इकट्ठे हुए थे, उन तक मोदी साहब का ये संदेश सीधा सीधा पहुंचा है। और मैं मानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे इन समाजों से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पटेल समुदाय है, दलित समुदाय है, उन समुदाय से भी लोग यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर आए थे और प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो लेकर बिल्कुल अपने विस्तार में वापस जाएंगे और ये बात वहां तक पहुंचाएंगे।
ये थे रॉक्सी छारा। और इसके पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार सुबह से ट्विटर के जरिए सक्रिय थे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर हमले बोल रहे थे। उन्होंने लोगों को मौसम की जानकारी देते हुए आगाह किया था कि आज जुमलों की बारिश होने वाली है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को लेकर एक बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। आपको सुनाते हैं कि संगीत सोम ने क्या कहा।
बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास, क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था, क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था।
ये थे संगीत सोम। इस बयान को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सोम और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा इतिहास से जुड़ा है और इतिहासकार इसे किस तरह से देख रहे हैं ये जानने के लिए मैंने मुगलकालीन इतिहास के जानकार प्रोफेसर आरनाथ से बात की।
पीएम को एक चिट्ठी लिख करके ये कहा कि देखिए ये सब जो है वो बातें बिना समझे बूझे बिना पढ़े लिखे आप ये सब बातें कह रहे हैं, इन बातों में क्या सार है, क्या आप वो करना चाहते हैं जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया कि तोपे और लगाकर बमियान बुद्धा को ढा दिया। हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मिडिवल पीरियड, खासतौर से मॉल पीरियड हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, हमारी संस्कृति का पार्ट है। और हम जिन लोगों को दोष दे रहे हैं, बाबर या अकबर या शाहजहां, वो सब जो कह रहे हैं कि वो डकैत थे और लुटेरे थे, आपको मालूम है वो क्या थे? बाबर की आपने वेल्डी देखी कि बाबर क्या कहता है, उसने 1529 में धौलपुर में एक वेल बनाई हमारी उसके लिए कि बेटा यहाँ जो है वो विधर्मी बहुत है, यहाँ तुम कभी भी धर्म के मामले में और अत्याचार मत करना। और हम उसके पूरे 4 साल के जीवन में देखते हैं कि उसने कहीं कोई मंदिर नहीं ढाया। अकबर ने लगभग 50 वर्ष राज किया, उसने यहाँ आपकी हिंदू जो रीति रिवाज थे क्या राखी क्या तिलक क्या जड़ों का दर्शन उसको अडॉप्ट करके मुगल स्टेट को मुगल राज्य को उसने विशुद्ध और नेशनलिस्ट एक तरह का राष्ट्रीय साम्राज्य बना दिया। अब ये लोग ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ जो 150-200 उपनिषद है, अकबर पहला आदमी था जिसने सोचा कि हमें अल्लाह का उपनिषद भी बनाना चाहिए, क्योंकि अब अल्लाह अरबियन गॉड ही नहीं है, अब अल्लाह जो है वो इंडियन गॉड भी है। तो उसने एक जो है अल्लोपनिषद बना दिया। इसके बाद औरंगजेब आया, तोड़फोड़ की, वो बात भी हम कहते हैं उसने मंदिर तोड़े तो उसमें कोई इनकार नहीं है, तमाम विध्वंस किया उससे भी कोई इनकार नहीं है। अमीर खुसरो को नगा सकते हैं, जिस अमीर खुसरो ने यहाँ के लोगों से कहा कि अगर संसार में कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है।
आपको क्या लगता है कि ये जो इतिहास को लेकर, खासतौर पर मुगल काल के इतिहास को लेकर, मुगल काल की इमारतों को लेकर जो बयान आ रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या चुनावी राजनीति में फायदा लेने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं?
देखिए ये तो यही बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, इनके मंतव्य क्या है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, एक दृष्टिकोण तो ये है कि ऐसी पागलपन की निहायत ही गलत बातों पर ध्यान देना भी बेकार है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये आए बैठे बात करें तो एक एक बात की चर्चा हो सकती है। और मैंने तो अपनी किताबें भेज दी है, एक किताब प्राइम मिनिस्टर को भेज दी है और एक किताब जो मेरी लेटेस्ट ताजमहल किताब है। और ये जो कहे मैं अपनी किताबें भेजने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ, आ जाइए बात कीजिए। आप या तो मेरी बात समझ लीजिए, अपनी बात समझा दीजिए। तंगी सोमन साहब ऐसी भी बातें कही है कि मुझे आश्चर्य होता है, यानी अंग्रेज हम पर 150 साल हुकूमत कर गया, हम लोग इतने गलेबल थे और इतने बोधे थे, ये क्या अब भी हमको उतना ही बोधा समझते हैं? जब कोई नहीं बोलेगा हम चाहे जो कुछ कर जाएंगे। ये सब जो है वो जुनून में या यूं क्यों कहिए कि ओवर एंथुसियाज्म है जिसमें ये सब बकवास कर रहे हैं।
ये थे प्रोफेसर आरनाथ, जिन्होंने संगीत सोम के बयान को बकवास बता दिया है। अगली खबर बंगलुरु से। बंगलुरु पुलिस ने एक महिला और एक युवक के साथ मारपीट के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर हमला अवैध बूचड़खाने की शिकायत करने पर किया गया। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
शनिवार की शाम को नंदनी और उनके दोस्त ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में देखा कि 14 गाय को कुछ लोग एक दुकान के पास ले जा रहे हैं। उन्होंने कार रोकी और उनके एक साथी ने छोटे रोड में देखा कि 3 गायों को एक कमरे में ले जाया गया है। उन्होंने फौरन पुलिस में शिकायत लिखा दी कि वहां एक अवैध कसाईखाना चलाया जा रहा है। नंदनी कहते हैं कि पुलिस ने करीब 2 घंटों तक कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस का बयान इस पर विपरीत है। पहले सुनिए नंदिनी ने क्या कहा।
तो उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे हमारे साथ और हम लोग गए वहां पे। उसके बाद बाहर 30-40 आदमी थे। एक पतली सी गली है, उसका डेड एंड है जहाँ पे इलीगल स्लॉटर हाउस है। तो वो गली के वहां पे 30-40 आदमी थे, तो मुझे और रीअश्योरेंस हो गई कि भाई पुलिस होगी भाई अंदर, इसीलिए इतने लोग आ गए यहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली पुलिस किसी स्पॉट पे होती है तो भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है। तो जैसे मैं डेड एंड में पहुंची तो मैंने ये देखा कि एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं है और एक पुलिस भी नहीं है वहाँ, कोई भी रेस्क्यू एक्टिविटी नहीं चल रही। और जैसे ही ये नोटिस किया, ऐसे बाहर से एक बड़ा सा जो बोल्डर या पत्थर कुछ पीछे के कांच पे लगा गाड़ी के, और वो कांच शैटर हो गया एक जगह से। और जैसे ही ये हुआ तो वो 2 कांस्टेबल जो थे हमारे साथ वो गाड़ी से बाहर निकल गए। और मैंने देखा एकदम से एक बड़ा सा मॉब मोबिलाइज हो गया है।
नंदिनी का कहना है कि उन पर हमला होने के बाद मोटरसाइकिल और कार में युवकों ने उनका पीछा किया। उन्होंने पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई, पर पुलिस का कहना कुछ और है। बेंगलुरु साउथ के DCP SD शरणप्पा ने कहा,
They visited police station on 7:38 Saturday. So on Hodaga, they said that there is some people have hoarded some cattle in Avalalli.
उनकी शिकायत दर्ज होते ही हमारी होयसला पुलिस पेट्रोल उस जगह गई। उनके साथ जो शिकायत दर्ज किए थे वो भी वहां गए थे, लेकिन वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां गए और 3 गायों को बचाया। पर नंदिनी और रिजिल हमारे अधिकारियों की बात नहीं मानकर उसी जगह पहुंच गए। वहां उनकी कार एक ऑटो रिक्शा और एक बिजली की पोल से टक्कर लगी, तो लोग वहां उन पर पत्थर फेंके हैं। बहरहाल हम दोनों शिकायतों को रजिस्टर करने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। ये थे DCP शरणप्पा के शब्द। लेकिन नंदिनी का मानना है कि इस सारे मामले में पुलिस और अवैध कसाईखाने के लोगों के बीच ताल्लुकात हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इराक की सेना ने जानकारी दी है कि उसने किरकुक एयरपोर्ट और सैन्य ठिकाने पर अधिकार कर लिया है। इराकी सेना कुर्द बहुल इस इलाके के तेल और गैस प्रतिष्ठानों पर अधिकार हासिल करने के लिए अभियान चला रही है। कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार ने इराकी सेना के अभियान को कुर्दों के खिलाफ जंग बताया है। उत्तरी इराक के कुर्द बहुल इलाके में बीते महीने हुए जनमत संग्रह के बाद से तनाव बना हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ रजनीश कुमार।
इराक के किरकुक में सरकारी सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबरें हैं। इराकी सेना का दावा है कि उसने किरकुक में सैन्य ठिकाने और एयरपोर्ट पर अधिकार हासिल कर लिया है। सरकारी TV के मुताबिक इराक की सेना ने बिना संघर्ष के ही कुछ इलाके पर अधिकार हासिल कर लिया है। हालांकि कुर्द अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संवाददाताओं के मुताबिक किरकुक में दुकानें बंद हैं और सड़कें खाली हो गई हैं। इराक की सरकार और स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र के बीच तनाव बीते महीने हुए जनमत संग्रह के बाद शुरू हुआ। जनमत संग्रह में कुर्दिस्तान के लोगों ने बड़ी संख्या में आज़ादी के पक्ष में मतदान किया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने जनमत संग्रह को असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग उठाई थी। वहीं कुर्दिस्तान सरकार ने जनमत संग्रह को वैध बताते हुए बातचीत पर जोर दिया था। दोनों पक्षों के बीच रविवार की बातचीत नाकाम रही और गतिरोध खत्म नहीं हो सका। इराकी सेना ने जानकारी दी थी कि उसने सैन्य ठिकानों और संघीय प्रतिष्ठानों पर अधिकार के लिए अभियान शुरू किया है। हालांकि इराक के उपराष्ट्रपति डॉक्टर अयाद अलावी ने BBC से कहा कि इराक की सरकार कुर्दों के साथ टकराव को टालना चाहती है। उन्होंने कहा, इराक में मुद्दों को सुलझाने के लिए हिंसा वास्तविक रास्ता नहीं है। मेरी बड़ी चिंता ये है कि ये संघर्ष बढ़ेगा और देश में बड़े पैमाने पर रक्तपात की वजह बनेगा। दूसरा ये कि इसने 2 बेहद खराब संभावनाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पहला ये है कि अतिवाद और चरमपंथ फिर से सिर उठा सकता है, और दूसरा ये कि इससे इराक की आंतरिक मामलों में कुछ पड़ोसी देश भी दखल दे सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये थे इराक के उपराष्ट्रपति के शब्द। उधर कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति मसूद बरजानी के प्रवक्ता एरी मेमचाई ने इराक की सेना पर कुर्दों के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारे साथ बातचीत करने के बजाय इराक की सरकार ने सेना भेज दी और वो हम पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि वो बातचीत के हमारे अनुरोध को ठुकरा चुके हैं और उन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये थे कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता के शब्द। वहीं अमरीकी सरकार ने कहा है कि वो पूरे मामले को लेकर चिंतित है और तनाव कम करने के लिए बातचीत को सबसे उम्दा रास्ता मानती है।
इस बीच खबर है कि इराक की सेना किरकुक के मध्य में पहुंच गई है और हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट सुना रहे थे रजनीश कुमार। और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, साथ में है इंदु पांडे।
मेरा भी नमस्कार।
जी हाँ इंदु जी, आपके पास चिट्ठियां हैं या ईमेल हैं बहुत सारी, श्रोताओं की नाराजगी है, श्रोताओं ने हमारी जो तारीफ की है वो भी है, तो आप बताइए आप नाराज हैं या तारीफ करने के मूड में हैं?
नहीं नहीं, तारीफ कर देते हैं क्योंकि उससे मूड बन जाता है,
नाराजगी भी उससे फिर पच जाती है।
जी, ये हमारे पास मेल आया है अनिल कुमार का। हरियाणा के रेवाड़ी में एक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और पहली बार संपर्क कर रहे हैं, और इनके दादाजी भी बीबीसी हिंदी और उर्दू दोनों सुना करते थे, उनके साथ साथ इनको भी सुनने की आदत लग गई। तो इन्होंने इतनी तारीफ़ की, कहते हैं कि आपसे मैंने हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों सभाएं उन्होंने सुनी, जिससे कि इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद हुई,
मदद मिली इनको जी,
और अब वो इंग्लिश टीचर और उसके बाद प्रिंसिपल बने।
तो ये तो बहुत ही बीबीसी के लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि एक अध्यापक जो एक नई पीढ़ी को राह दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, उन्होंने बीबीसी से कुछ सीखा, ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, अगली बार भी आप चिट्ठी लिखिएगा।
और दूसरा हमारे पास मेल है, ये भी अनिल है, इनका नाम है अनिल शुक्ल, जिन्होंने बीबीसी रेडियो के कार्यक्रमों में आमंत्रित विश्लेषकों पर एतराज़ जताया है। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो उसकी आलोचना करवाने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार को आमंत्रित किया। शुक्ला जी ने सवाल किया है कि बीबीसी हिंदी के सभी विश्लेषक नेगेटिव क्यों होते हैं।
अनिल शुक्ला जी, आप शायद ये पढ़ा नहीं आपने, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इलाहाबाद से हमें लगातार चिट्ठियां लिखते हैं, हमारे कार्यक्रमों को बहुत गौर से सुनते हैं और हम इसके लिए उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आलोचना करने में कभी वो पीछे नहीं रहते हैं, उनको जो भी महसूस होता है वो हमको सीधे सीधे लिख देते हैं। मेरा आपसे यही कहना है अनिल जी कि जो भी विश्लेषक हम आमंत्रित करते हैं, ये सोच करके या ये तय करके नहीं आमंत्रित करते हैं कि वो सरकार की आलोचना करने वाले हैं या सरकार का समर्थन करने वाले हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक वहाँ रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। उनका शुमार देश के बड़े आर्थिक विश्लेषकों में होता है। एक और जो हमारे विश्लेषक हैं आर के मिश्रा, जिन पर आपने एतराज जताया है, वो गुजरात में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों का उनका एक तरह से अनुभव है प्रिंट पत्रकारिता में। तो हम जिससे भी बात करते हैं हम उनकी जन्म कुंडली देख करके बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि उनका अनुभव कितना है।
बिल्कुल। और ये हैं गौतम दत्त किशनगंज से, लिखते हैं कि बीबीसी इंडिया बोल में मोहनलाल शर्मा और अनुमिता रॉय चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम में अधिकतर जागरूक श्रोताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। धर्म गुरुओं को भी चाहिए कि लोगों को जागरूक करें, न कि धर्म के नाम पर उकसाएं।
गौतम दत्त जी, आपको इस बार का इंडिया बोल पसंद आया जिसे मोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया था, हमें इस बात की बहुत खुशी है। हम कोशिश यही करते हैं कि इंडिया बोल हो या दूसरे कार्यक्रम, उसमें तमाम तरह की राय आपके सामने आ सकें, तो ये कोशिश इस बार सफल हुई तो हमें बहुत खुशी है इस बात की।
और नरसिंह शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत संग संग गुनगुनाओगे मनमोहक है, कर्णप्रिय लगा। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जो हमारे नए साथी हैं आदर्श राठौर, उनको सुनते समय लगा कि कहीं राजेश जोशी तो नहीं।
आदर्श राठौर हमारे नए साथी हैं, उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया है और बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां आई हैं, ईमेल भी आए हैं कि वो बहुत अच्छी ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है।
गाँव कटाई जिला मुजफ्फरपुर बिहार से मोहम्मद इंकलाब उस्मानी लिखते हैं कि मैं 10 साल की उम्र से बीबीसी सुनता हूँ, आपके कार्यक्रम का क्या कहना, जो लोग आपके दुश्मन वो पत्रकारिता के दुश्मन।
ये तो देखिए आपने ऐसी बात कह दी कि हम इसमें क्या कहें, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, पत्रकारिता के दुश्मन भले ही कहीं हो या ना हो, लेकिन बीबीसी का तो कोई, हमारे सब श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रमों पे एतराज़ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन हैं तो बीबीसी परिवार के सदस्य।
बिल्कुल। और ये अगला मेल है डिकिन्स कुमार का, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं CRPF में। बीबीसी न्यूज़ को 6 वर्षों से सुन रहा हूं, ये लिखते हैं और आगे कहते हैं कि आप लोगों ने मेहनत कर छात्रों के लिए रेडियो और फेसबुक पर हिंदी में न्यूज़ सुनाई, विनीत खरे जी की आवाज़ सुनने में इनको
खरे की आवाज़ पसंद आती है, और फेसबुक पर अगर आप सुनते हैं हमें तो ये तो बहुत अच्छा, अभी हमने हाल ही में शुरू किया है और बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि फेसबुक में स्पष्ट आवाज़ आती है, कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजिकल दिक्कत होती है लेकिन जब सुनते हैं तो बहुत साफ साफ सुनाई पड़ता है।
और मोहम्मद लुकमान आलम राइन छिन्नमस्ता सप्तरी नेपाल से लिखते हैं, बहुत सारी तारीफ लिखने के बाद कहते हैं कि मेरी उम्र 25 साल की है और आपकी न्यूज़ सुन के पूरी दुनिया की खास खबरें मालूम हो जाती हैं, और राजेश जोशी जी आपकी आवाज़ और टैलेंट बहुत अच्छा है।
देखिए ये चिट्ठी आखिर में जब कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आया है तो ये तारीफ की चिट्ठी आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नेपाल से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो पता एक बार फिर से नोट कर लीजिए, चिट्ठी लिखना चाहें तो है बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और आपकी राय के बाद बात समोसे की। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समोसा एक भारतीय नमकीन पकवान है, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास कुछ और ही कहता है। दरअसल समोसा मीलों दूर से आया है। कहाँ से आया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। और अब जान लेते हैं कि खेल की दुनिया की क्या है हलचल, बताने के लिए मौजूद हैं सुमिरन प्रीत कौर।
जी बिल्कुल, टेनिस से शुरुआत की जाए, आजकल हर जगह चर्चा है क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेनिस से शुरुआत करते हैं। रॉजर फेडरर ने शंघाई मास्टर्स के फाइनल में हराया वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नदाल को 6-4, 6-3 से हाल ही में यह मुकाबला हुआ। दूसरी तरफ फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 मारिया शारापोवा ने थियाजिन ओपन के फाइनल में हरा दिया अरीना को, और 7-5, 7-6 से ये मुकाबला जीता। और
जो इन्होंने दिग्गज चमक रहे हैं।
जी बिल्कुल, और जो वापसी की है इन्होंने, ये इनका पहली जीत है इनकी मई 2015 के बाद, डोपिंग की वजह से जो बैन लगा और उसके बाद इन्होंने जो वापसी की है। और अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा 22 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले कल एक मुकाबला होगा, एक प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं, जिसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच
दौरे पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद।
बिल्कुल। और जहां तक फुटबॉल की बात है तो राउंड ऑफ 16 में आज मुकाबला होगा दिल्ली में कोलंबिया और जर्मनी के बीच, वहीं पैराग्वे और अमरीका के बीच।
मेजबान टीम नहीं है।
बिल्कुल, अभी मेज़बान टीम तो खैर बाहर हो चुकी है, राउंड ऑफ 16 शुरू हो चुका है, जिन जिन ने अच्छा परफॉर्म किया, जिन टीम्स ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया उसमें भारत फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अंडर 17 वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16।
लेकिन जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए बड़ा मौका है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है और उनके पास देखने का बड़ी टीमों को।
बिल्कुल। और अब वो जो कहते हैं ना बज क्रिएट हो, जो बज होता है वो अब शुरू हो रहा है,
वो अब शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुमिरन, वक्त विदा लेने का है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मंच से नारा दिया, मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं। 4 साल जेल में सजा काटने के बाद तलवार दंपति आज गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए। उन्हें 12 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड में बरी किया था। इराक सरकार के समर्थन वाली सेनाएं किरकुक शहर को कुर्दिश सेनाओं के कब्जे से वापस लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां से हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। स्पेन की सरकार ने कहा है कि कैटालोनिया क्षेत्र के प्रमुख यह साफ करने में नाकाम रहे हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था या नहीं। पुर्तगाल में अधिकारियों ने बताया है कि जंगलों में लगी 100 से ज़्यादा आग ने कम से कम 30 लोगों की जानें ले ली हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।